اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. درود پڑھیے محمد علی محمد. غدیر کے ہی سلسلے میں کچھ بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سارا شروع سے جب سے آپ لوگ نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ایک پیغام تو سنتی چلی آ رہی ہے کہ کس طرح حج پہ گئے تھے, کس طرح حج سے پلٹے, کس طرح وہ میدان پہ پہنچے, اور جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان سے کہا گیا کہ واپس آؤ, جو لوگ رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا, یہ ساری چیز ہو رہی تھی, اونٹ کے بال آن کے ممبر بنایا گیا. پھر یہ ساری چیز آپ لوگوں نے مدتوں سے سنی ہوئی, سنتی رہتی ہیں, ہر سال سنتی ہیں. اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بلایا, اور بلانے کے بعد پھر ایک پیغام, آگے پیچھے کی بہت ساری چیز چھوڑ کر بس ایک پیغام سنا دیا جاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا, یہی کہا جاتا. اس کے بعد کہنے کے بعد ختم. اس کے بعد مولا اور یہ وہ دوسری چیزیں چل رہی ہوتی. بھائی اس کے اندر کوئی پیغام بھی دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ یہ خالی اگر یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ اعلان ولایت کی گئی ہے تو اعلان ولایت. تین دن تک یہاں رک کے اللہ کے رسول اور کر کے آ رہے تھے کیا کام؟ یہ خالی یہ فقرہ کہنے کے بعد بات ختم ہو گئی تھی؟ بات تو ختم نہیں ہوتی. تو پھر کیا کیا کہہ رہے تھے اور کیا کوئی ایسی چیز اس میں ہے جو ہمارے لیے تھی؟ لیکن ہمارے لیے یہی تھی کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا. خالی یہی تھوڑی کہا میں جس کا مولا اس کے علی مولا, یہاں پہ نہیں کہا تھا. پہلے کہا تھا کیا میں تمہارا مولا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ جو ہے وہ نہیں رکھتا, حق نہیں رکھتا, سب سے اقرار لیا کہ ہاں رکھتے ہیں. اس کے بعد کہا پھر یا کہا یہ والی بات کہ پھر جس کا میں مولا ہوں, جس طرح سے میں تمہارے نفسوں پہ, اسی طرح علی جو ہے یہ بھی تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہے. تو اب اس پر بات کھولی جاتی کہ یہ حق رکھنے سے کیا مراد ہوا, مولا سے کیا مراد ہوئی. اچھا پھر کچھ بھی نہیں سن لیا گیا, سب لوگوں نے نعرے لگائے, بات ختم ہو گئی. اور ختم ہو گئی ہو پھر دو چار آپ لوگوں میں سے آ جائیں گے یہاں پڑھ دیں گے, بات اور زیادہ ختم ہو جائے گی. یعنی کہ خوش ہو گئے, نیچے جائیے گا تبرک بٹے گا, ختم ہو گیا. اور کیا کہا تھا جب وہاں سے آئے تھے تو کہا تھا کہ عنقریب پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, حمد و ثنا کے بعد کہا کہ عنقریب میں تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں, میرا وقت قریب آ گیا ہے, میں رخصت ہونے والا ہوں. یہ سب کہا, اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ اس موقع پہ وہاں پہ کہا تھا رسول اللہ نے سب سے پہلے, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری عطرت. تم اس سے منسلک رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, گمراہ نہیں ہوگے, نہیں ہوگے پہنچو گے. اس کے بعد پھر یہ ساری چیز کہی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے نفسوں کا مالک ہوں, اسی طرح علی بھی اس کا مولا ہے اس کے نفسوں کا مالک ہے, یہ والی بات کہی. اس کے بعد کہا کہ خداوندہ جو علی کو دوست رکھتا تو اس کو دوست رکھ, جو علی کو دشمن رکھتا تو اس کو دشمن, جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر. اب علی تو آج موجود نہیں, حضرت علی تو مدد کیسے کریں ہم لوگ؟ ہم دوست رکھ رہے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا, اب ہم کیا دوست رکھتے ہیں؟ حضرت علی کو علیہ السلام کو دوست رکھ رہے ہیں ہم, وہ دوست رکھ رہے تھے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. ہم کسی ترتیب سے نہیں آئے تھے کہ آپ لوگوں سے یہ گفتگو کرنا, بس ایسے ہی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا چلیے آپ لوگوں کو سنا دیں. وہ چھٹے امام کے دوست صاحب تھے, ایک دوست صاحب دے, جو علی کو دوست رکھا پروردگار تو اس کو دوست. بات تو سمجھیے, سمجھ جائیے زندگی کے ایک ایک پل ایک ایک وقت جو ہے گزرتا چلا جا رہا, ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. اور موت مومن کے لیے خود مولا ہی نے کہا کہ بہترین تحفہ دی. بہترین تحفہ کس کے لیے کہا؟ کہ مومن کے لیے کہا. مومن کے لیے کہا تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور واقعی ان کو اپنا مولا جاننا ہے. اگر واقعی مولا جانیں گے, اچھا خالی یہی نہیں کہ مولا جانو بات ختم ہو گئی, آگے بھی بہت ساری بات کہی. پھر خیمے پہ گئے, ابھی وہ سنا رہے ہیں چھٹے امام والی بات. خیمے میں گئے، اور خیمے میں علی حضرت علی السلام کے لیے الگ سے خیمہ نصب کیا گیا، اور تمام مسلمان جو جوگ در جوگ آئے تھے ان سے کہا کہ جا کے علی کو امیر المومنین علیہ السلام کے امیر المومنین کہہ کے سلام کرو اور ان کو مبارکباد دو۔ یہ امیر المومنین کا خطاب وہاں بھی ملا، اور کہا اب ان کا سب کے سب آنے لگے، سب امیر المومنین کہنے لگے اور ان کو مبارکباد دینے لگے۔ ہم لوگ بھی امیر المومنین اب تک کہتے ہیں، اذان جب ہمارے یہاں ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امیر المومنین امام المتقین ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے تو ہیں اور متقی بننے کو تیار نہیں ہوتے، صرف کہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیز ہم لوگ صرف کہتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہنے سے کافی ہو جائے گا، ہم بخش دیے جائیں گے، کام ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ جاری رکھا، تو یہ کیا کہا، جو علی کو دوست رکھے پروردگار تو بھی دوست رکھنا۔ اب علی کو دوست، چھٹے امام کے ساتھ ایک شخص چلتا رہتا تھا، اتنا ساتھ رہتا تھا کہ لوگ اسے چھٹے امام کا رفیق کہنے لگے تھے، دوست کہنے لگے تھے، نام سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آپ کو سنایا ہوا واقعہ، سنایا ہوا واقعہ اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا تو یاد کہلائے گا، ورنہ یاد نہیں کہلائے گا۔ کوئی چیز یاد کب کہلاتی ہے؟ چھٹے ہی امام، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عظیم فقرہ نہیں، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عظیم ذکر نہیں، لیکن اصل ذکر وہ ہے کہ جب کبھی حرام و حلال کی کوئی بات آئے اس وقت اللہ یاد آ جائے، تو یہ ہے اصل ذکر۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ آپ کو کوئی چیز ہم کہیں کہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں، سنا تو چکے ہیں، لیکن آپ کو کسی موقع پر یا ہر وقت، بہت ساری چیزیں ہر وقت یاد رہتی ہے کہ یا نہیں یاد رہتی، اگر نہیں یاد رہتی تو بیکار وہ سننا، یاد رکھنا بیکار ہے کہ یاد نہیں۔ تو اس کو کوئی شخص جو تھا، اس کو کوئی اس نام سے، اس کے نام سے جانتا نہیں، سب رفیق کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ میں اس کا جو تھا وہ غلام بھی تھا، گزرتا جا رہا تھا، تھوڑی دیر بعد اس نے کسی کام کی وجہ سے مڑ کے دیکھا تو غلام غائب تھا۔ پھر چلتا کہ پھر تھوڑی دیر بعد مڑ کے دیکھا، پھر بھی غلام نہیں نظر آیا۔ کافی دیر کے بعد جب غلام اسے نظر آیا تو اس نے اس کو گالی دے کر بات کی، کہنے لگا کہ پتہ نہیں دیں یا نہ دیں، کہ دیں کیا، یہاں صبح شام 24 گھنٹے گھروں میں چل رہی ہوتی ہو، باہر جو ہے مرد لوگ چلا رہے ہیں، تو اس پہ دینے میں کیا آ رہا ہے، تو بتا دیں۔ اس کو شرم آ رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا، لوگ اسے کیا کہہ رہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، پانچویں امام کوئی تعلق نہیں۔ گالی بکنے کو بہت شدید ترین مذمت کی گئی، گالی بکنے کی بہت شدید، یہاں دیکھیے گھروں میں کس قدر گالیاں بکی جاتی ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، بچوں کو اپنے اولادوں کو لوگ دے رہے ہوتے گالیاں، ان کو کوئی ذرا بھی پرواہ نہیں ہو رہی۔ یہ فوش کلامی جو ہے سخت ترین ناپسندیدہ چیز اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ہے، ائمہ تارین کی نگاہ۔ بہرحال اس نے پلٹ کے اس کو کہا کہ حرام زادے تو کہاں رہ گیا تھا۔ بس جیسے یہ والی بات سنی، سچی کہانیاں مرتضیٰ متحری کی کتاب ہے، سچی کہانیاں 2 جلدوں میں ہیں، اب اس میں دیکھ لیجیے کہ حرام زادے تو کہاں رہ گیا تھا۔ امام پلٹے، ماتھے پہ زور سے ہاتھ ماری، کیا کہا تم نے؟ اب وہ تھوڑا سا چکرا گیا، گھبرا گیا کہ مولا اصل میں یہ کافرہ کا بیٹا ہے، تو کافروں کے یہاں شادی کہاں ہوتی، یہ وہ باتیں بنانے لگا۔ کہ نہیں، ہر قوم، ہر اس کے درمیان میں ایک شادی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں واسطے دے۔ میں تو تمہیں سمجھتا تھا، آج تک سمجھتا تھا کہ تم بڑے ایک نیک و متقی پرہیزگار آدمی ہو، آج پتہ چلا کہ تمہارے پاس تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چلے جاؤ میرے سامنے سے، کبھی نہ آنا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جو علی کو دوست رکھتا تو اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھتا تو اسے، یہ بھی تو دوست بن کے چل رہا تھا، بھگا دیا گیا۔ تو ہم اگر علی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، جو امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کا خطاب تمام ائمہ میں صرف مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کو ہے، یہ صرف ان کو ہے، کسی کو نہیں۔ تو جب آپ چھٹے امام نے یہ کام کیا، تو پھر حضرت علی علیہ السلام سوچیے کہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ میں گزرنے والے، ساتھ میں رہنے والے، اسے دوست کہنے والے، زبانی طور پہ کیا تقویٰ اور پرہیزگاری سے آری ہوں گے، اور مولا کہیں گے یہ میرے دوست ہیں، کہ ہم نے تو کون سی ایسی زحمتیں نہیں تھی جس کو اٹھایا نہ ہو، تم کہہ رہے ہو تم ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے تم ہمارے دوست بننے کے لیے تیار ہو۔ تو یہاں پر جو دنیا میں ہم خوشی منا رہے ہیں، اس خوشی منانے سے پہلے ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم ان اصولوں پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مثلاً آپ کیوں نہیں جمع کر کے لا کے دیجیے، ہم हम भी तमाम इधर उधर बयान करेंगे, आप भी। आप देख लीजिए कुरान में कहाँ कहाँ लिखा गया अंजाम बखैर तो बस परहेजगारों का है, जहाँ अंजाम बखैर परहेजगारों का है जिनको जन्नत दी जा रही उनको सबको एक जगह जमा कर लीजिए। जमा करने के बाद देख लीजिए किस किस सिफत के बाद कहा गया कि ये लोग जन्नत में जाएंगे। अमल तो बहुत दूर की बात, फिक्र की भी बात बताइए। फिक्र फिक्र कहा जा रहा है जैसे सूरह कसस में है, नहीं है ये दुनिया की नेमतें तो हर किसी नाकिस को मिल जाती है, मगर ये आखिरत अगर हम लोगों हमने उनके लिए मखसूस कर रखा है, लोग जब फसाद बर्पा करते हैं ना फसाद की फिक्र करते हैं और अंजाम बखैर तो बस परहेजगारों का, ये फिक्र भी नहीं करते फसाद की। यहाँ तो फिक्र तो बहुत दूर, फिक्र से ऐसा भरा रहता है कि बस मामूली से जैसे गुब्बारे में सुई चुभा दिए भड़ से हो जाता, बस वैसी होती कि ज़रा सा टच हो जाए फिर घर में देखिए क्या असर हो रहा होता, इधर क्या असर हो मोहल्ले में ख़ानदान में क्या क्या हो रहा। तो ये क्या इन तमाम चीज़ों को हमें लंबी गुफ्तगू करके कोई फ़ायदा नहीं, उससे थोड़ा सा गौर करना चाहिए, किसी एक नुक्ते को पकड़ कर हम कोई एक कदम तो आगे बढ़ें, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। अपना जायज़ा लीजिए, अगर जायज़ा हम लोग लें अपना, अगर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल ना हो कयामत के दिन भी तो शायद मुश्किल ही है हम लोगों का भी आगे कहीं खिसकना। ठीक है अलियन वलीउल्लाह तो हमने इकरार तो कर लिया, लेकिन इकरार करने के बाद उसका पास नहीं रखा, हमने उसका पास नहीं रखा। अभी अभी आगे बढ़ते हैं तो पास भी पता चल जाएगा कि कितना पास रखा कितना पास नहीं रखा। तो ये कहा गया इनको जो इनको दोष रखे परवरदिगार तो उसको दोष रख, जो इनकी मदद कर तो उनकी मदद क्या करें उनकी। कभी कोई मदद के सिलसिले में मौला की मदद के सिलसिले में कोई हमने बात कोई बताई, जो जो इनकी मदद करे उसकी मदद कर, जो अली की मदद क्या करें हम। अली के लिए तो मदद के लिए हम पुकारते हैं मौला को, या अली मदद बच्चा गिरने लगा बुला लिया या अली मदद, और भी किसी बड़े काम के लिए बुलाते हैं मौला मदद कीजिए मेरी, सुबह आँख नहीं खुली मौला मेरी मदद कर दीजिए, नहीं करेंगे। काजे आयतुल्ला कश्मीरी की एक बात आप लोगों को बताई गई, डॉक्टर आबिद ने बताया होगा आप लोगों को, एक वजीफ़ा बताया होगा आयतुल्ला कश्मीरी का, जब उनका कोई मसला कोई दरपेश होता था वो क्या करते थे, 7 दफ़ा नादे अली पढ़ते थे, मौला मुश्किल कुशा को हदिया करते थे, उनसे तवसल करके। अब 7 दफ़ा अगर आप पढ़िएगा, आप देख लीजिए 7 दफ़ा मैं पढ़ रही हूँ कितनी देर लग, घड़ी में देखा कीजिए अपनी तस्कीन के लिए, अरे 7 दफ़ा पढ़ना पड़े, आप घड़ी आप कहिएगा 5 मिनट में 7 दफ़ा ख़त्म हो गई, 5 मिनट में ख़त्म हो गई, 5 मिनट में ख़त्म हो गई, तबसल कीजिए दुआ मांगिए अपनी मुश्किल के लिए, मेरी मुश्किल ये हल कर दे, मेरी सुबह की नमाज क्यों नहीं आँख खोली, मेरी बहन जो है क्यों नहीं कहना मान रही कि ये पर्दा करे, मेरे फला काम ऐसा क्यों नहीं। कभी हलाल और हराम किसी अच्छे काम के लिए भी कभी दुआ के लिए, कि सिर्फ इसी फना होने वाली दुनिया के लिए सारी दुआएँ हैं जो छूट जाने वाली हैं, छूट जाने वाली दुनिया के लिए तो दुआएँ कर रही, बाकी रहने वाली आखिरत के लिए दुआएँ नहीं करते, वो बाकी रहने वाली, तो बाकी रहने वाले के लिए दुआ कीजिए जो चीज़ बाकी रह जाए। तो कहा जा रहे जो उसकी मदद कर रहे हैं वो मदद कर, तो अली की मदद के लिए बुलाइए, अली की क्या मदद करें। आपको कोई सुनाया था मौला ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि तुम ये काम नहीं कर सकते, क्या काम, मैंने तो इस तुम्हारी इस दुनिया की एक चादर दो रोटी, एक फटी हुई चादर दो रोटी पर इत्तफाक किया, मैं मानता हूँ कि तुम ये नहीं कर सकते, मगर इतना तो करो, कहते रहे इतना तो करो कि कोशिश और सही और परहेजगारी के ज़रिए से जो है हमारी मदद करो, इतना तो करो सलामत रवि कोशिश परहेजगारी के ज़रिए से। उस सब जगह पांचवें इमाम भी यही कहते कि तखवे और परहेजगारी के ज़रिए से हमारे मिशन में हमारी मदद करो। ये मौला भी जो आवाज़ लगा रहे कि है कोई जो मेरी मदद करे, वो किस चीज़ की मदद चाह रहे हैं, सब तो ख़त्म हो गया, अब कहे की मदद चाह रहे हैं, वो यही वाली मदद चाह रहे हैं कि जो दीन यहाँ तक लेके आए थे उसको आगे बढ़ाओ, तो हमारी मदद है परवरदिगार, जो तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करे। तो अली की मदद क्या है कि आज से आपको लेना कि क्या अली की मदद करें, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम इनकी मदद क्या है, खैर छोड़िए तो बड़ा लंबा सिलसिला चले जाएगा क्या मदद करें, हम अभी इसी पर आते हैं कि गदीर ही भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा, फिर कहा जा रहा है रसूलुल्लाह गदीर के खुतबे में, पता नहीं आपने कभी सुनी कि नहीं सुनी ये बात, उसी खुतबे के दौरान कहते हैं ए लोगो हर वो हलाल जिसको मैंने तुम पर हलाल किया आगाह हो जा, आगाह हो जाओ हर उस हलाल को जिससे मैंने तुमको आगाह किया, हर उस हराम से जिससे मैंने तुम्हें मना किया है, लिहाजा उसे याद रखो, यानी हलाल को याद रखो हराम को याद रखो, ये याद रखो उसको जिससे मैंने तुम लोगों को आगाह, ये गदीर में रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं बयान कर रहे हैं। अगर और आपस में एक दूसरे को वसीयत करो, नसीहत नहीं का वसीयत करो, एक दूसरे को वसीयत करो, आपस में एक दूसरे को वसीयत करो, किस चीज़ का हराम और हलाल की वसीयत करो, इस पे दोस्ती कायम हो सकती है आप लोगों की। अगर किसी को नसीहत करे तो उससे दोस्ती कायम नहीं होती कभी। उस आदमी से अगर नसीहत करने लगे तो बहुत बुरा जानते हैं लोग, ये बहुत बुराई हो गई। तो कह रहे कि एक दूसरे को वसीयत करो और उसमें रद्दो बदल मत करो, उसमें रद्दो बदल मत करो। फिर क्या करें, नमाज को कायम करो, ज़कात देते रहो, नमाज को कायम करो, ज़कात देते रहो, यानी ज़कात खुम्स जो है ये देते रहो और देते रहो। नेकियों को हुक्म दो, बुराई से रोको। हर आदमी की ज़िम्मेदारी बताई गई कि नेकियों को हुक्म दो, बुराई से रोको, नेकियों को हुक्म दो, बुराई से, हर आदमी की ज़िम्मेदारी। जब आप ये वाली ज़िम्मेदारी पूरी कीजिएगा तो खुद बखुद नेक बन जाइएगा। ये वाली ज़िम्मेदारी से क्यों लोग जान छुड़ाते हैं, इसलिए जान छुड़ाते हैं कि लोग पलट के कहेंगे अच्छा तुम तो ये कर रहे थे हमें नसीहत करो, इसलिए जान छुड़ाने के लिए क्या करते हैं किसी को नसीहत दें। जबकि हर आदमी के ज़िम्मे ये बात लगाई गई है कि नेकी की दावत दो, बुराई से रुको। यहाँ पर कहा जा रहा है ए लोगों याद रखो, फिर क्या काम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रुको। क्यों? फिर ये भी करेगा जान लोग तुम्हारे लिए ये आमाल का सर, तुम्हारे आमाल का सर क्या है, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, जो तुम्हारे अमाल का सर बताया जा रहा है। भाई तुम्हारे 60,000 नेकोकार और 40,000 बदकार पे याद आया, याद आना चाहिए ना सब जगह। भाई तुम्हारे 60,000 नेकोकार और 40,000 बदकार, वो ऐसे वाले नेकोकार जो अमर बिल मारूफ नहीं करते, सबकी जिम्मेदारी लगाई गई। तो वो तो कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को वसीयत करते रहो, नेकी को हुक्म दो, बुराई से रोको एक दूसरे को। हम लोगों ने नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना इसलिए रोक दिया, इसलिए रुक गए हैं कि खुद ही वो पलट गए। आप भी तो मम्मी, आप भी तो गाना सुन रही थी, आप भी टीवी वाला प्रोग्राम नहीं देख रही थी, हमें मना कर रही थी। तो वो जो देखेगा वो मना ही नहीं करेगा, कभी कभी भूले से भी नहीं मना करेगा। तो इसलिए लोगों ने ये अमर बिल मारूफ नहीं मुटकी छोड़ दिया, क्योंकि उनको भी अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दिया। और यहाँ आप मनाती रही है जितना जी साहब जोर जोर शोर से, ना मन खबत पड़ती रही है और मिठाइयाँ बांटती रही है और ये सारे काम छोड़ दिए तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि असल तो यही है। तो क्या नेकियों का हुक्म दो, बुराई से मना करो, जान लो कि तुम्हारे अमालों का अमाल का सर जो है अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर है। ये गदीर के खुतबे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था। ये देखो नमाज भी सिखाई जा रही है वहाँ पर, ज़कात भी बताया जा रहा है कि ज़कात दो, नमाज़ पढ़ो, ये करो, और क्या करना चाहिए इस दिन, क्या करना चाहिए, क्या 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 चीज़ बताई गई, ये इसे बताया जा रहा है कि आज क्या करो, कि गुसल करो। अब अभी तो ख़त्म हो गया, एक दो दिन आगे निकल गया, लेकिन वक्त आया तो चलिए याद एक इसमें से नुक्ता दे रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, गुसल करो। ऐ गुसल करने में क्या कहा जाता है, गुसल किया तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए, होता नहीं कि जुमे को गुसल करोगे तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये करोगे तो इस दिन जो गुसल करेंगे इसमें गुनाह माफ़ हो रहे हैं। गुसल करने के बाद क्या कहा जा रहा है कि अभी रोज़ा रखो। रोज़ा रखने में क्या कहा जा रहा है, क्या होगा तुम्हें, कितने साल का सवाब मिलेगा, हज का सवाल 1,00,000 हज का सवाब मिलेगा, 1,00,000 उम्रे का सवाब मिलेगा। बाद जगह लिखा कि 2,00,000 हज, 2,00,000 उम्रे का सवाब है। तो किस वजह से क्या, किस वजह से रोज़ा रखने से, सुबह ही अभी आँख खुली, आज हमें जश्न मनाना है, सब कुछ करना, वो हमसे रोज़ा रखवा दिया गया अल्लाह ने, रोज़ा रखो। अब रोज़ा रखेंगे तो कोई बुरा काम ही नहीं कर पा रहे हैं, न गीबत हम कर पा रहे हैं, न चुगली कर पा रहे हैं, न बेपर्दा निकल पा रहे हैं, न झूठ बोल पा रहे हैं। चलो आज ड्रामा भी नहीं देख सकते, हमसे रोज़ा रखवा दिया अल्लाह ने, रोज़ा रखो। समझ रही ना क्या कहा जाए, रोज़ा रखवा दो। पर खाली रोज़ा भी कहा कि जोर से पहले पहले फिर नमाज भी दो रकत पढ़ो, लीजिए नमाज दो रकत पढ़ो, छोटी भी नमाज नहीं करवाई जा रही। कहा गए सूरह हम तोड़ो, उसके बाद 10 दफ़ा आतल कुर्सी पढ़ो। अब आतल कुर्सी में पढ़ने में लग गए, 10 दफ़ा आतल कुर्सी पढ़ो, फिर कहा जा रहा है कि 10 दफ़ा इन्ना जलना पढ़ो, फिर 10 दफ़ा सूरह हम पढ़ो कि मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई, न कि उनके रास्ते पर जिन पर गज़ब ढाया गया। तो हर तरह से बुरा, पूरे दिन हमें बुराई से रोक लिया गया। अब हो गई शाम और हम थक हार के फिर जाके पड़ गए, तो मतलब क्या निकला? इसको हमने अपने अल्फाज में बताया कुछ मतलब निकालने के लिए, समझाने के लिए। मतलब यह निकला कि ये जो विलायत का ऐलान हुआ है इसको तुम किसी और तरफ न ले जाना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब गुनाहों से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ तुम्हें बचना है। तभी नमाज़ पढ़वाई जा रही है, तभी रोज़ा रखवाया जा रहा है। देख रहे हैं नमाज भी पढ़वाई गई तो नमाज़ तुमको बेहयाई बुरी बातों से बाज रखती है, और रोज़ा भी रखवाया गया सुबह से शाम तक, कर रोज़ा रखो ताकि बुराइयों से तुम बाज रहो। तो ये सब क्या करवाया जा रहा, ताकि हमने क्या काम किया, इसको ढाल बनाया कि हम अली को मानने वाले हैं, जो जी चाहे जो काम करते रहे, हम मौला बख्शवा देंगे, मौला बख्शवा देंगे। ये पूरे ज़माने में पूरा ये लगा कि मौला बख्शवा देंगे, हम तो अली को मान। यहाँ जो अली को जो बना के भेज रहे हैं, जो अली की हमें जो है तारुफ करवा रहे हैं, वो ये वाला काम कर रहे हैं कि रोज़ा रखो, नमाज पढ़ो, और क्या करो अपने भाइयों के साथ क्या करो, खुश अखलाकी के साथ पेश आओ, यहाँ दस्ते गरेबान रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मनी से फुर्सत नहीं। क्या कहा आज के दिन, क्या कहा जा रहा है, अपने भाइयों के साथ खुश अखलाकी से पेश आओ, उनको तोहफे तहायफ दो, हो रहा होता सब चीज़ें दे रहा होता है तोहफे तहायफ, जानी दुश्मन ने 6 महीने से शक्ल नहीं देखी उनकी, वहाँ तो ये कहा जा रहा है हमने तो 6 महीने से शक्ल ही नहीं देखी उनकी, तो उसे हम क्या किया जाए। तो ये सब काम किस लिए करवाया गया, इसलिए करवाया गया हमसे कि हम गुनाहों से बचें। एक ही मुद्दा है, तमाम तर सब चीज़ों का एक ही हल है कि गुनाहों से बचें, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। वो बुरा इसलिए लगता है कि गुनाहों से वो गुनाह की लज्जत हमें मिल गई है, नेकी की अल्लाह की फरमाबरदारी की लज्जत नहीं मिली, वरना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हकीकत है, हम लोगों को गौर भी करना चाहिए। आप हम सब शामिल हैं उसके अंदर, हम उसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको अलग काट के बड़े नेकोकार बन गए हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आप शामिल हैं उसमें कि हम इसी माशरे में इसी माहौल में रहें जहाँ ये सब कुछ किया गया है, होना ये चाहिए था और ये किया गया कि आज के दिन तो सब एक दूसरे पर निगाह रखते कि कोई गुनाह न करने देते, कोई गुनाह नहीं करें, मौला है तो तब बच्चों को भी याद रहता कि मौला अली के मानने वाले तो हम गुनाह नहीं करें। क्या कह रहे हैं रसूल्ला के, क्या बता रहे थे आपको रसूल्ला क्या कह रहे हैं, रसूल्ला कहते हैं कि लोग खाने पीने से लोगों का दिल भर जाता है लेकिन मेरा नमाज से दिल शेर नहीं होता, ये कह रहे हैं शेर नहीं होता। यहाँ जिस वक्त आप यकीन सच सच बताइएगा, जिस वक्त आप पढ़ रही थी दो रकत नमाज तो क्या हो रहा था
यार, यूँ करके नीचे देख रहे थे तो 7 दफ़ा अभी हुआ
कातल को, 7 दफ़ा पड़ी अभी नीचे उंगली, जबकि हम हर वक्त गिनते रहते हैं हमें पता रहता कि क्या चीज़ का, लेकिन फिर भी आप देखिए
उकताहट ये देख रहे हैं, अच्छा ये तो
7 दफ़ा हुआ सिर्फ, 9 दफ़ा हुआ। वो कह रहे हैं हम सब लोग शेर हो जाते खाने पीने से, हम नमाज से शेर, तो हम भी हम अपना जायजा लें कि क्या हम नेकी से, नेकी में लज्जत कभी आ रही हमें, नेकी में लज्जत आती है हमें, हमें नेकी में लज्जत ही नहीं आती, बुराई में लज्जत आती, घंटों बात कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बात सुन रहे होते हैं, उसमें लज्जत, नेकी में हमें लज्जत ही नहीं आती, हम इतने दूर हो गए कि नेक काम करने में हमें लज्जत नहीं, अल्लाह के रास्ते पर चलने में हमें लज्जत नहीं आ रही, अफसोस का मुकाम है। यही मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इसको सुन के उनकी तारीफ पे ले जाके हमने रखा और उसके बाद अलग हो गए, इसको सुना किसी चीज़ को और उनके फजाइल पे इसको रखा, रख के अलग, कह रहे हैं कि मुझे इस दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, शदीद गर्मियों में रोज़ा रखना पसंदीदा, यानी उन्हें लज्जत आ रही है, तलवार से अल्लाह के राह में जिहाद करना उन्हें लज्जत आ रही है, मज़ा आ रहा उनको, और मेहमानदारी करना ये उनको मज़ा आता है, इन सब चीज़ों में मेहमानदारी के, मेहमान आया हो उसकी खातिर तवाज़ो करें, ये उसको मज़ा आ रहा है उसमें, हमें मज़ा ही नहीं आता। मेहमान आ जाए अगर कोई, हमारे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाई है, बनाई गई है, किसी ने बनाया है, इत्तेफाक से फोन आ गया कि मैं भी आ रहा हूँ और वो उसके पसंदीदा नहीं था, अभी देखो क्या उसकी दुर्गत बनती है कि आज ही आना था, इससे पहले कभी नहीं आया, आज आ रहा है, हाथ से नवाला गिर जाएगा, चीख पुकार शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह, और आएगा भी तो वो उनकी गिबत, ये मेहमानदारी हो रही है, जो मेहमानदारी पसंद है कि अल्लाह ताला उस बंदे को पसंद करता है, ये जब अपनी कब्र से बरामद होगा तो उसका चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक रहा होगा, कोई कहेगा कि ये फरिश्ता है, कोई कहेगा कुछ कहेगा, तो बास फरिश्ते कहेंगे ये वो बंदा है, ये वो मोमिन बंदा है जो मेहमान के आ जाने से खुश हो जाया करता है, तो इसलिए इसका चेहरा जब निकला तो चौधरी के चांद की तरह वहाँ चमक, यहाँ कितना भी चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो कह लिया जाए, लेकिन एक वो देख रहे थे हम लड़के सब भेजा करते हैं इसके ऊपर, देखा था एक लड़की ने मास्क लगाया हुआ था, वो खौफनाक जैसे मुर्दों का मास्क नहीं ऐसे करके लगाया था, वो लड़का उसको बड़ी गौर से देख रहा, लड़की ने यूँ करके उल्टा तो बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी लेकिन वो चीखने लगा ज़ोर से, वो लड़की सटपटा के गए, जब तक ये लगा हुआ था तो खुश था, जैसे मेरा चेहरा देखा चीखने लगा, फिर तुम्हारा चेहरा देख के इसलिए चीख रहा कि सांप भी तो खूबसूरत होता लेकिन अंदर जहर भरा होता, अल्लाह माफ़ करे, तो ये हो रहा होता है, तो क्या कि उनको मज़ा आ रहा गर्मियों के रोज़े में, उन्हें मतलब यहाँ कहने का है, समझाने का है, अपने आप से बात करने का, खुद बात कीजिए अपने आप से, ये बात कीजिए अपने आप से कि हमें नेकी में मज़ा क्यों नहीं आता, ये हमें क्या हुआ कि हमें नेकी में मज़ा नहीं आता, मौला में मज़ा आ रहा है, रसूल्ला कह रहे हैं हमें इसमें मज़ा आ रहा, वो कह रहे हैं मज़ा आ रहा, हमें मज़ा नहीं आ रहा होता, किसी नेकी में मज़ा नहीं आता, तो क्या हो गया कि अल्लाह की राह पे चलने से हमें लुत्फ़ नहीं आता, मज़ा नहीं आता, शैतान के रास्ते पे चलने पे हमें मज़ा आता है, हैं हम बड़े दीनदार आदमी। ये लोगों ने इस तरफ लगाया है, ख़ासतौर से लगाया, हमें गुमराह किया, ख़राब किया, हमारी आदत को बिगाड़ा, इसी वजह से तो ये सारे प्रोग्राम कहा जाता है शान शौकत के साथ मनाओ, दो दिन मनाओ, तीन दिन मनाओ, तीन तीन चार चार दिन। अभी वो खातून आई थी, कह नहीं रही कि तीन चार दिन तक मनाना चाहिए, फिर तीन चार दिन मना के क्या गया? अगर ऐसे ही मनाया जाएगा तो बेकार, अगर ऐसे मनाया जाएगा कि हमें तीन चार दिन तक मुसलसल कारबंद रहना सख्ती के साथ, 40 दिन 30 दिन तक रोज़ा रखने के बाद कहाँ सख्ती के साथ का, हम उसी रोज़े के अंदर रास्ता निकाल लेते हैं गुमराही का, अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता उसी रोज़े के हालत में निकाल लेते हैं, निकालते कि नहीं निकालते हैं, लेकिन तो क्यों सब मिल के सोचते नहीं कभी? हर आदमी ने सोचने का वो जो है गौर फिक्र का वो दरवाज़ा बंद किया हुआ, कि हम किसी चीज़ के बारे में गौर फिक्र करें इसका दरवाज़ा बंद किया हुआ, इसकी फजीलत जो बार बार बताई जाती कही जाती तो सुन के ऐसे ही बस ऐसे सुन लिया बस ठीक, हर चीज़ को जो रवा रबी में सुना जाता ये सुनना बेकार है, हम 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे कितनी देर तक बात करते थे, बिल्कुल बेकार ये सारी चीज़ें, कुछ भी रहे रवा रवि में अगर सुना जा रहा है, एक साथ का गौर फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल है, यानी कितनी बात सुना चाहते, सुनाने क्या फ़ायदा होता, सुनाने का तो फ़ायदा होता नहीं, फ़ायदा तो उसी वक्त होगा जब वाकई गौर फिक्र करें, या आप जहन में बचपन से जितने वाक़ियात सुनती चली आई उसमें तलाश कीजिए कि एक साथ का गौर फिक्र से क्या फ़ायदा मिला, किसी को किसी ने क्या फ़ायदा हासिल किया। अगर कहा जाता कि हजरत हुर किस पे थे, किसके दीन पे थे, उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसके बाद क्या क्या काम उन्होंने किया, कैसी नमाज़ें पढ़ी, कैसे उनके रोज़े थे, हमारे एतबार से था रोज़ा या नहीं था, तोड़ रहे थे या नमाज़ें हो रही थी, सारी चीज़ तो गलत होती चली जा रही थी, अगर सब देखा देखा गलत था, उसके बाद उससे बड़ा गलत काम किया कि मौला को रोका, रोकने के बाद क्या किया थी ना, उससे बड़ा गलत काम किया कि हटा दिया खेमे दरिया सटे, कितने गलत काम करते करते चले जा रहे थे, अगर इसको सबको जमा कीजिए तो क्या नतीजा निकल रहा। लेकिन आपने कहा नहीं कि सुना नहीं कि 70 साल की इबादत से अफजल है, काम क्या किया, कौन सा काम किया, सिर्फ एक काम किया, सोच रहे थे, गौर फिक्र कर रहे थे, गौर फिक्र कर रहे, गौर फिक्र करके इस, जब गौर फिक्र तो अल्लाह मदद भी करता है ना, 70 साल की इबादत कौन देगा, अल्लाह के अलावा है कोई जो इबादत का सवाब हमें दे दे, उसने इबादत का सवाब दिया। जब इन्होंने सच्चे दिल से गौर फिक्र, कभी तो सच्चे दिल से गौर फिक्र कीजिए कि हमें जाना है इस दुनिया से, किसी भी मौत की खबर सुनी तो आपने सोचा हमें भी जाना, हमें तो खौफ पैदा हो रहा, हम कैसे जो है वो कब लेटे होंगे, लोग नमाज़ पढ़ रहे होंगे, हमारी नमाज़ पढ़ी जा रही, लोग हमें ले जाकर अंधेरे में छोड़ के आ जाएंगे, अब हमें डर लग रहा, अब हम क्या करें, अब हम दुआ पढ़ें ना, तीन तीन चार चार दफ़ा हर नमाज के बाद 3-4 दफ़ा वो दुआ पढ़ें, ए अल्लाह मैं तुझसे मौत के बरहात सवाल करता हूँ, बाद मौत के बख्शिश के हिसाब से माफ़ी कर, इसलिए कि मौत तो आनी है, हर हाल में आनी, किसी वक्त भी आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, पता नहीं चला हाय हाय करके रह जाएंगे, वो तो हाय हाय करेंगे आपको तो उसका भी मौका नहीं मिलेगा, जब आ जाता है ना फरिश्ता तो ये हाय हाय करने का भी मौका दूसरों को मिलता है, जिसके पास आ गया उसको नहीं मिलता मौका। तो जब हमें मालूम को जाना तो हम गौर फिक्र करें, बार 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 कोई ऐसा काम करें कि कुछ सरजद ना होने, भाई अल्लाह ताला खौफ भी दिलाया गया, शौक भी दिलाया गया, दोनों काम दिलाया गया, कि मौत का शौक भी दिलाया गया कि मरेगा ठंडे शरबत की तरह, मीठे पानी शरबत पीने की तरह है, कभी कहा गया कि मौत जो है मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा, फिर खौफ भी दिलाया गया, यही मौला खौफ भी दिला रहे, अगर तुम्हें तुम वो चीज़ें देख लेते जो कब्र में मुर्दों तुम देख लेते तो तुम्हारी क्या होता, तुम्हारी हड्डियाँ जो है गोश्त छोड़ देती। तो बार बार बताया जा रहा जब तक गोश्त छोड़ेंगी नहीं तब तक नहीं बाज आइएगा, गौर करें, गौर करें, सोचें, गौर करें, एक साथ गौर फिक्र किया हजरत हुर ने तो फिर कहाँ पहुँचे, अपनी जान दी, अपना मनसब दिया, अपनी औलाद दी, अपने ग़ुलाम दिया, अपना भाई दिया, देखिए गौर फिक्र भी, ये किसने दिया, क्या हुआ, फिर उधर से तौफीक आई तब दिया, अगर तौफीक ना आती तो ना मिलता, सच्चे दिल से गौर फिक्र किया तो अल्लाह ने तौफीक भी दी। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिकायत परवरदिगार से की, परवरदिगार मेरे माल गया, मेरा असबाब गया, मैंने सब्र किया, मेरी औलाद गई, मैंने सब्र किया, मैंने ये किया, मैंने सब्र सब्र बार बार जताते जा रहे, कहते जा रहे, तो ऊपर से आई ए अय्यूब ये तौफीक तुमको दी किसने, तो फौरन ज़मीन से खाक उठाई और मुँह में डाल ली, हाँ परवरदिगार बेशक तूने तौफीक दी। इन्होंने सच्चे दिल से गौर किया, गौर करने के बाद अल्लाह ने तौफीक दी, तौफीक दी तो ऐसी गज़ब की तौफीक दी कि देखिए आए कदमों भी गिरे, माफ़ी मांगा, अपनी औलाद को भेजा, ये किया, खुद भी गए, भाई भी गया, गुलाम भी गया, या कोई एक इतनी सी चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं होते, इतनी सी चीज़ अल्लाह की राह में छोड़ने को तैयार हम नहीं होते, क्योंकि वे गौर ही नहीं करते ना, भाई भाई की छोटी सी बात को छोड़ने को तैयार नहीं होते, बहन की किसी बात को दरगुजर करने को तैयार नहीं होते। हैं मौला के मानने वाले, अभी जश्न मनाएंगे वो करेंगे। वो कहा गया है, क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जब नियामत मिलती है तो क्या चाहते हैं, क्या होता है नियामत, ये जो विलायत की नियामत हमें मिली है, क्या मिली, विलायत की नियामत मिली है, तो नियामत जिस कदर अजीम होगी, आप सोचिए ज़रा, अगर नियामत ये विलायत की, देखिए अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, ठीक है, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, तो रहमान है तो क्या हुआ, कि काफिर गुली में रहमान है, वहाँ भी बारिश बरसती है, वहाँ भी जो लोग बीमार हो जाते हैं वो शफा पाते हैं, उनके भी खेत खलियान में जो है सब उगता है, उनके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। जो सूरह वाकया पढ़िए, और हर जो जिनकी बच्चियाँ उनसे कहिए तालीम दीजिए उनको, कि जब एक रसूलल्लाह के एक सहाबी नहीं थे, जब उनको बहुत रसूलल्लाह के बाद उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, तो फिर बाद में लोग आए उनकी खुशामद के लिए, चाहे ये ले लीजिए वो लीजिए, आखिर उन्होंने कहा कि आपकी ये बेटियां हैं तो आप ऐसा कीजिए हमसे कुछ माल असबाब ले लीजिए इनके काम आएगा। उन्होंने कहा नहीं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए थे, ये जो सूरह वाकया की तालीम देगा उसे माल और दौलत की कोई ज़रूरत की कमी नहीं, तो मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाकया की तालीम दे दी है। क्या ये सुनने के बाद हमें वो नहीं होता कि हम बच्चों से कहें कि सूर्य वाकया की तालीम दे, तुम भी सूर्य वाकया पढ़ो 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 पढ़ो, इतने आदी हो जाओ कि घड़ी देख के कहो कि 5 मिनट में ख़त्म होगी, फिर क्या शुरू करके हम माने शुरू कर दो, जब माने शुरू कर दोगे तो माने याद होना शुरू हो, जब याद होना शुरू हो तो किसी मौके पर कहना शुरू करो, जैसे अभी ये याद आया तो मैं कह रहा हूँ, अभी एक बात कहने जा रहे, खेत खलिहान में पैदा नहीं होता तो उस पर सूर्य वाकया याद आ गया, ये तुम जो बच्चे तुम्हारे पैदा होते हैं ये तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं, ये तुम्हारे यहाँ बीज जो तुम डालते हो उससे खेत तुम पैदा करते हो या तुम उगाते हो या हम उगाते हैं, ये बादलों से बारिश तुम बरसाते हो या हम बरसाते हैं, ये सब है उसमें कि नहीं है, ये सब कौन काम करता है, सब अल्लाह ताला काम करता है, तो किसके लिए कर रहा है, तो काफिरों के लिए भी कर रहा, मुशरिकों के लिए कर, मुनाफिकों के लिए, सबके लिए कर रहा, ये कर रहा, क्या कर रहा है, ये वो नियामत है जो नियामत आम है, ये वो नियामतें हैं जो आम हैं, सेहत की नियामत आम है, माल और दौलत दिया गया, औलाद दी गई, सब चीज़ दी गई, ये आम नियामत, लेकिन ख़ास नियामत कहाँ है, कि ख़ास नियामत सिर्फ मोमिनीन को अता हुई है, कौन सी नियामत पढ़िए पे दुरूद, ये हम लोगों को सबसे बड़ी नियामत जो मिली है वो आले मोहम्मद की वलायत है, ये हम लोगों को सबसे बड़ी नेमत मिली, तो नेमत बहुत ज़्यादा अजीम है, जब नेमत अजीम है तो उसकी नाशुकरी का गुनाह भी बड़ा होगा, सुन लीजिए और याद कर लीजिए, अब आए हो उस मुकाम पे, उस बात पे जो हमें कहनी थी, थोड़ी सी बात, इतनी बात कहनी थी, इतनी बड़ी तमीज़ हमें करनी पड़ी, नेमत जब जितनी बड़ी नेमत होगी उतनी नाशुकरी, उसकी नाशुकरी जो होगी उतना ही बड़ा गुनाह होगा उसकी नाशुकरी, क्योंकि हदीस में हमें यही बताया गया, क्या बताया गया, हर नेमत का शुक्र खुदा के हराम करदा चीज़ों से बचने में है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रवायत नहीं, खुद उन्हीं की है, बिहारुल अनवार की, हर नेमत का शुक्र क्या है, खुदा के हराम करदा चीज़ों से बचने में है, हर नेमत का शुक्र, तो नेमत विलायत जो अहले बैत की नेमत दी गई हम लोगों को दी गई है, नेमत दी गई है, इसका शुक्र कैसा अदा होगा, ये अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों से बचने में होगा इसका शुक्र, ना कि इनके कंधे पर या इनको ढाल बना के हम गुनाह करें, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ी नाशुक्री होगी, खुद छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, कि ये भी कहते हैं कि खुदा की कसम, अल्लाह ताला की, खुदा की कसम, हम अल्लाह ताला की वो नियामत है, हम अपने आप को कहें, हम यानी आले मोहम्मद जो है, हम अल्लाह ताला की वो नियामत है जिसे खुदा ने अपने बंदों पर इनाम किया है, हम अल्लाह ताला की वो नियामत है जिसे खुदा ने अपने बंदों पर इनाम किया, तो जब इनाम किया है तो नियामत की हमको उसकी नाफरमानी का ज़रिया तो नहीं बनाना चाहिए ना, ये मोहम्मद आले मोहम्मद को अल्लाह ताला की नाफरमानी का ज़रिया तो नहीं बनाना चाहिए, देखिए हम उसे ज़रिया बना लें, याली मदद कह दिया बस काफ़ी हो गया, याली मदद कह दिया बस काफ़ी हो गया, ना हैदर हैदर तरह तरह की बातें निकाली गई, क्या गुनाह करने के लिए, गुनाह करवाने के लिए तरह तरह की बातें निकाली गई। अब देखिए माशरे में इतनी बातें फैली हुई हैं कि जिसको इंतहा नहीं, कभी मौका आएगा तो वो आपको बेहतरीन नमाज के सिलसिले में बात बताई जाएगी, आगे तो होगी बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई बताई जाएंगी। देखिए रोज़ाना नई नई चीज़ें ईजाद की जा रही हैं, तो जो गुनाह की तरफ मायल होने वाले लोग होते हैं वो हर चीज़ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो उसूल दीन की तरफ मालूम उसूल पे होते हैं, कायम होते हैं कि उन्होंने कुरान हदीस पढ़ा हुआ, वो उधर नहीं जाते। कहते नहीं, गुनाह तो जो है वो किसी हवाले से भी कहिएगा गुनाह तो गुनाह है, अल्लाह ताला की नाफरमानी तो नाफरमानी है, वो किसी हवाले से नहीं हो सकती, चाहे मौला के नाम, ये जो कोई कह रहा है ये गलत कह रहा है, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो हमें ये जो नेमत दी गई है इसकी हमें शुक्रगुजारी कैसे अदा करनी है, हराम से बचना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर नेमत का शुक्र अल्लाह ताला के हराम करदा चीज़ों बचने में है, ये नेमत का शुक्र है, वरना आपने नेमत का शुक्र अदा नहीं किया, चाहे आप लाख कुछ पढ़ती रहिए, लाख मिठाइयाँ बांटती रहिए, कुछ भी करती रहिए, ये शुक्र अदा नहीं होगा, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो खुद मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम ने इशाद फरमाया, आप फरमाते हौज़े कौसर पे मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँगा, और मेरी इतरत मेरे साथ होगी, सही है। फिर और क्या कहते हैं, और जो हमसे मोहब्बत करता है उसे हमारे बातों पे को अपनाना चाहिए, जो हमसे मोहब्बत करता है उसे हमारी बातों को अपनाना चाहिए और हमारे अमल के मुताबिक अमल करना चाहिए। जो हमसे मोहब्बत करता है, सब मोहब्बत का दावा करते हैं, तो जो कह रहे तो वो पुकार के कह भी तो रहे कि जो हमसे मोहब्बत करता है उसे हमारी बातों को अपनाना चाहिए। हम बात ही नहीं सुनते आपकी, खाली बातों को अपनाने नहीं, ये फिर कह रहे हैं और हमारे अमल के मुताबिक अमल करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मैं माना कि तुम इतना नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतना तो करो, वो तो कम से कम पे भी आ गए। ये तो कौन कह रहा है कि तुमसे कि एक फटी हुई चादर और दो सूखी रोटियों पे गुजारा करो, लेकिन कम से कम हराम खाने से तो बचो। भाई भाई का इंतकाल हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चे थे क्या हुआ कि अब जो बड़े हो जाएंगे तो उनको दे दो, उनके दे दो छोटे बच्चों को, यतीमों को उनका हक दे दो, तो पता चल रहा है हक तो दिया नहीं, यहाँ तक कि खुद भी मर गए, तो अब ये सारा जो मीरास का माल था दिया उनकी औलाद के पास चला गया, अब ये तो बच्चे रुल गए हमेशा हमेशा के लिए, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, इसका खामियाजा पूरा ख़ानदान भुगतेगा, क्योंकि ख़ानदान के तो लोगों को पता था, उन लोगों को नहीं पता था, उनको तो प्रेशर डाल सकते थे। तबूक का जो वाक़ा जो सुनाया गया था उसमें आपको जो हमने सुनाए थे, एक दफ़ा जंग का वाक़ा सुनाया था, क्या सुनाया था, क्या उसमें से इबरत ली थी, यही तो थी कि तीन आदमी टाल मटोल करके रह गए थे, वो नहीं गए थे, जब रसूलुल्लाह वापस आए तो उन्होंने मुँह फेर लिया था, फिर असाबियों ने भी मुँह फेर लिया था, जब खबर मिली तो उनकी बीवियों ने भी मुँह फेर लिया, पूरे मोहल्ले वालों ने, मदीने वालों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मुँह फेर लिया, तो यहाँ कोई मुँह फेरता, उनका यार हमारे उनके बड़े अच्छे ताल्लुक है, अब क्या करें, वो नहीं कहते हमसे क्या मतलब है, पूछ लिया जाएगा आपसे भी पूछ, ये मुबर्रा अपने आप को ज़ाती तौर पर मत कीजिए, अल्लाह ताला पूछेगा कि उन यतीम बच्चों के लिए बाकी जो रिश्तेदार थे वो खामोश क्यों थे, क्यों कहा जा रहा है 60,000 नेकोकार पे अदाब नाजिल करेंगे, किस लिए 60,000, बत्तख के पर नोच रहे थे बच्चे, खाली बत्तख के पर नोच रहे थे, क्या हुआ ज़मीन फटी हुआ अभी समा गया उसमें, नमाज पढ़ने वाला क्यों समा गया उसमें, इसलिए कि वो मना नहीं कर रहा था, जुल्म होता हुआ अपने आप गो के बत्तख, यहाँ पे मोमिन बच्चे पे जुल्म हो रहा, मोमिनीन पे जुल्म हो रहा, खामोश लोग पड़े हुए और कहा जा रहा हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आपका खामो ख्याल है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, सीधी सीधी ज़िंदगी ये दुनिया जो है ये पुल सरात है, आप यहाँ पे अय्याशी करने के लिए हम लोग नहीं भेजे गए, यहाँ पे अय्याशी करने के लिए वो लोग हैं जो अय्याशी कर रहे हैं, उनको देखकर अय्याशी नहीं करना, उनके लिए तो सरदस्त यही दुनिया है आखरत, उनके लिए कुछ भी नहीं, जिनके लिए सरदस्त यही दुनिया आखरत कुछ नहीं, हम उनके पीछे क्यों चल रहे हैं, हमें तो उनके पीछे चलना है जिन्होंने बताया, जिन्होंने तकलीफ़ें उठाई, जिनके लिए जिनके सदक़े में ये दुनिया पूरी बनाई गई, तो वो तो इस दुनिया से लुत्फानंदोज़ नहीं हो रहे, नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहना ऐसे हो रहे हैं कि रात रात भर नमाज पढ़ रहे हैं कि पैर सूजा जा रहा है, आवाज़ आ रही है ए मोहम्मद बस करो, ये लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया, दुनिया जो है आखरत की खेती है, इस खेत आखरत की खेती है, दुनिया दुनिया की खेती बना के रहना है, ये तो यहूद नसारा ने बनाया हुआ, दुनिया दुनिया की जी लो खा लो पी लो जी लो, बस जवानी एक बार आती है फिर नहीं आती, ये सब जो स्लोगन दिए जाते हैं ये गुमराह करने के लिए स्लोगन दिए जाते हैं, चाहे इसको कितनी खूबसूरती के साथ बना कर किया जाए। मौला ने तो आपके ही मौला ने मौला मुश्किल कुशा नहीं पेश तो कहा तो है कि दुनिया सांप की मानी तो खूबसूरत, ऊपर से नर्म है, मुलायम है, देखने में खूबसूरत है, लेकिन क्या है अंदर जहर भरा हुआ है इसके। तो ये जहर भरा हुआ इनके धोखे में मत आइए। दुनिया जो है ऐश आराम के लिए नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारे सुकून की चीज़ें आपको दी गई हैं आपको, लेकिन दुनिया जो है आखिरत की खेती है। दुनिया जो है कहीं पे उलमा कहते हैं कि दुनिया पुले सरात है, दुनिया ही पुले सरात है, वहाँ पुले सरात इतना बारीक में कैसे चले, कोई बारीक नहीं है। आपकी नेकियाँ उसे चौड़ा कर देंगी, उसे आसान बना देंगी, उसे रोशन कर देंगी, आपकी बदामालियाँ उसे बारीक कर देंगी, उसे गर्म कर देंगी, उसे धार की तरह तेज़ कर देंगी। ये सब हमारे अमाल से होगा, तो अपने अमाल से पुले सरात को अच्छा बनाइए। ये बेहतरीन सवाल भी, बिजली की कौन की तरह गुजर जाइए, तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाइए, आंधी की तरह गुजर जाइए या घिसटती हुई जाइए, ये तो आपके हाथ में है। इसलिए कहा गया कि दुनिया आखिरत की खेती है, हमने दुनिया को अपने लिए मज़ेदार बना लिया, जब पूछ लिया जाएगा पकड़ लिया जाएगा जो कहा जा रहा है, तो वो सारे के सारे लोग फिर क्या हुए, फिर वो लोग मायल हुए तौबा करने पर, तौबा करने के लिए फिर मजबूर हो गए कि हमें तौबा करना पड़े। फिर तौबा करने के लिए पहाड़ियों पे गए, तौबा किया, फिर क्या फिर कुरान की आयत आई, फिर वापस लाए गए। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये हमने वो छोटा सा वाक्य आपको बयान किया जो अभी दो तीन दिन पहले नेट पे पूछा गया था कि वो मर गया भाई, मर गया तो दूसरे भाई ने वो यतीमों के माल को जो बहुत छोटे थे तो उनको ले लिया, फिर उसके बाद उनको बड़े बड़े हुए तो दिया भी नहीं, और नहीं दिया तो खुद भी मर गए, खुद भी मर गए तो अब उनकी औलाद के पास चला गया, तो अब क्या किया जाए। तो क्या क्या किया जाए, बाकी लोग क्या कर रहे थे, रिश्तेदार आप लोग क्या करें, आपको पूछती रोकती कहीं, किसी को रोकती किसी को मना करती, आप कहते नहीं हमारे ताल्लुक ख़राब हो जाएंगे, हो जाए ख़राब ताल्लुक, ताल्लुकात को कौन सी बुरी बात आपसे कही कि आपकी बेटी पर्दा क्यों नहीं कर रही, जिसमें ताल्लुक ख़राब हो रहे हैं। हम आपको नेकी की दावत दे रहे हैं, आपके ताल्लुक ख़राब हो रहे हैं। हम आपको बुराई की दावा देंगे, आइए आपको टीवी ड्रामे में काम करवा देते हैं, सैदानी बनी हुई है ना आप बहुत, आइए काम दिलवाते हैं आपको, आपके बेटे को हम काम दिलवा देंगे, क्या काम करना होगा, कहीं वो दिखाया जाके कि बेगम साहब आ रही, वो गाड़ी उनकी साफ़ कर रहा है, टायर धो रहा है, ये टायर जाके धोएगा वहाँ पर जाकर, यहाँ जो मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह रसूल जो काम कर रहा है वो करने को तैयार नहीं, वहाँ ड्रामे में जाकर टायर धोएगा, ड्रामे में जाकर ट्रायली लेके आएगा कि वहाँ पर चाय लेके आई है, ये हेयर होस्टल बन जाएंगी, वहाँ पे सबको ऐर गैर नत्तू खैर शराबी जुआड़ी सबको जो है चीज़ें ट्रे के अंदर पेश करेंगे खुशामदाना तौर पे। अल्लाह रसूल जो काम करेगा वो नहीं करेंगी, सोचो ज़रा गौर करो, एक साथ का गौर फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल है, गौर तो करें नहीं, मज़ेदार बातें करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है हमारे साथ, हम मज़ेदार बात नहीं कर पाएंगे, बहुत माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से, बहुत माफ़ी, हम समझते हैं कि यही मज़ेदार बात है, यही मज़ेदार बात है, इतनी मज़ेदार बात है कि इस मज़े में इतना गुम हो गए, इतना गुम हो गए कि क्या हुआ, तीर निकाल लिया गया पता ही नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा मौला आपको आ रहा सजदा करने में, लेकिन हाँ मुझे सजदा करने में इतना ही मज़ा आ रहा। ये मज़ेदार बातें हैं अल्लाह की इबादत में, मज़ा परवर है खालिक कायनात, ये फना होने वाली दुनिया जो बनाई है, अकलें हैरान हो गई लोगों की इसकी चीज़ें देख कर के, कैसी चीज़ें इसके अंदर, एक एक चीज़ देख के हैरान है लोग, ये कैसी चीज़ बनाई परवरदिगार ने, इसको हैरान है यहाँ की चीज़ें देखे, इन चीज़ों में पागल हो गए मस्त हो गए लोग, जिसको वो कह रहा है बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है, अगर मक्खी के पर के बराबर भी होती तो काफिर को एक घूंट पानी ना देता, ये दुनिया अल्लाह की, तो जो आखिरत आपके लिए बनाई है, जब ये दुनिया समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज़ आप देखती हैं कहाँ समझ में आती है, कोई चीज़ समझ में आ रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसी है, क्या बनाई गई, अल्लाह मैंने कैसे बनाया इसको, समझ में नहीं। तो आखिरत सोचिए, जिसको वो तारीफ़ कर रहा है इसकी तो मजम्मत कर रहा है, खुद ही मजम्मत कर रहा है, कुरान में खुद ही गए धोखे की टट्टी है, ऐसी है मताए दुनिया, ये ऐसा है वैसा है, हर तरह की मजम्मत की गई, ये कोढ़ी के हाथ में सुअर की गोश बेगोश हड्डी से ज़्यादा बदतर ये दुनिया है, सब तो आपके मौलाई लोगों ने तो कहा जिससे आप बड़ी मोहब्बत करें, तो वो सब कह रहे हैं दुनिया बिल्कुल बेकार चीज़ है, आखिरत बहुत अच्छी थी, जब बहुत अच्छी चीज़ है तो यहाँ दुनिया के लिए तो गोलियाँ मारे ले रहे हैं, अपने चलांग लगाए दे रहे हैं, गोली मार ले रहे हैं, पंखे से लटक रहे हैं, दिन रात एक किए दे रहे हैं, जाग रहे हैं, गोलियाँ खा खा के ये हम जागते रहें ताकि ये मिल जाए वो मिल जाए सब दुनिया मिल जाए, आखिरत के लिए बहुत काहली आती, कोई काम करने को तैयार नहीं, इतनी शदीद गर्मी है मैं रोज़ा तो नहीं रखूँगा, दुनिया के लिए तो सब काम करोगे, आखिरत के लिए नहीं रोज़ा रखोगे, 1 लाख साल की इबादत कहा गया हज का सवाब तुमको दिया जा रहा, अब तो हज का सवाब बताते हुए लोग हज कहोगे हज हज अल्लाह करे तुम्हें हज नसीब हो तो उसका मुंह उतर जाता है, डर जाता है आज, ये पता नहीं काम मरवाने के लिए भेज रहे हैं मुझे, ये हज करवाने कहाँ भेज रहे हैं, तो हर चीज़ का तो मुश्किल बनाते चले जाते, कोई चीज़ किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, जो बात कहो उसी के पीछे कुछ ना कुछ अजीब सी कहानी पोशीदा होती है, तो लोग डर जाते हैं। कुछ ना डरो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह अकबर। एक वाकया आता है अल्लाह से डरने पे, शायद इससे तो रिलेटेड ना हो लेकिन सब चीज़ जो अल्लाह से डरता सब उससे रिलेटेड। एक आदमी था, उसके पड़ोस में एक कफन चोर रहता था। अल्लाह से डरने की बात बता रही, जो डरता तो अल्लाह देता क्या, करता क्या अल्लाह। कफन चोर रहता था उस वक्त, जब इस आदमी को जब ये बीमार पड़ा बेचारा, तो सोचने लगा कि मैं तो कफन चोर, तो हमारे पड़ोस में इसको तो फौरन ही पहले दिन पता चल जाएगा कि मैं आज दफना दिया गया हूँ, ये तो निकाल लेगा, अब क्या करें। तो इसने बुलवा भेजा उसे कि जाके उसे बुला के ले गया। वो आया, साहब सलामत हुई, हम बहुत बीमार हैं, उसे मिला लगो। कहने के हमसे बड़ी दरख्वास्त तुमसे हम एक कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। ये दो थैले दिया कि ये कफन के दो थैले हैं, एक में मामूली कफन है, एक में कीमती बहुत कफन है, तो मैं तो कीमती वाला तुम्हें दे रहा हूँ और तुमसे खुशामद कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि तुम ऐसा करना मुझे जो है कब्र में बरहना न करना, ये तो मेरा, इसलिए मैं तुम्हें पहले से दे रहा हूँ, ये कीमती कफन ले लो। उसने भी ले लिया, वादा किया, वादा करके चला है। दो दिन बाद उसका इंतकाल हो गया, दो दिन बाद इंतकाल हो गया। उसने सोचा कि भाई अभी तो मर गया है, बिलाजे के लिए हम अच्छा भला कफन क्यों छोड़ दें, तो ये हमें मिल गया, एक हमें इजाफा मिल जाएगा तो फ़ायदा हो गया। पहुँच गया रात को चुपके से अपना कब खोद खा के उतारने लगा तो अंदर से आवाज़ आई कि तू मुझे बरहना कर रहा है। बस ये आवाज़ सुन के पता नहीं क्या हुआ कि पहले भी वो कह चुका था और दोबारा फिर आवाज़ आई इसकी, उसके दिल पे इतना गहरा असर हुआ कि बेहद खौफज़दा हुआ। ऐसा खौफज़दा हुआ कि वहाँ से निकला, घर आया, बीमार पड़ गया, करीब था कि अब मरने वाला, तो इसने घर वालों को बुला के वसीयत की कि मेरी वसीयत है कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे जला दिया जाए, मैं दफनाया ना जाऊँ। और यही हुआ कि उसको जला दिया, दफनाया गया। अल्लाह की तरफ से उसके वहाँ पैगाम आया। अल्लाह कहाँ चींटी को पैगाम दे रहा है, चींटी के ऊपर वही आ रही है, शहद की मक्खी के ऊपर वही आ रही, छोटी छोटी बातों पे आ रही। अल्लाह ताला उसको, तूने ये क्या किया, क्या परवरदिगार मैं इस काबिल नहीं था कि तेरे सामने तेरा वो कथा, मैं खौफ ज़्यादा हुआ तेरे खौफ की वजह से। अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, शदीद नदामत के ऊपर ये खौफ की वजह से माफ़ कर दिया सब कुछ। तो ये जो खौफ खाने की बात मैं कह रहा हूँ कि खौफ खाइए, अल्लाह से खौफ खाइएगा तो इनाम ही इनाम पाइएगा, मज़ा ही मज़ा लीजिएगा। ये खौफ की वजह से हमारे पास खौफ ही नहीं रहेगा, किसी चीज़ का डर नहीं रह गया, अल्लाह ताला का तो खौफ है ही नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मैदान क़यामत में खौफ की वजह से बख्शे जाएंगे, लेकिन आपको तो है ही नहीं। मदाम पर क्या हो गया कि डर रहे हैं कि किस बात के परवरदिगार गुनाहों की वजह से माफ़ करो इसको, जाने दो। क्या समझ रही है अल्लाह ताला को, पता नहीं क्या समझ रही कि इससे ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई करता ही नहीं, तो वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत हमसे कोई करता नहीं। अरे 70 माँ बाप से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला वो परवरदिगार है, वो परवरदिगार माँ से 70 गुना। कौन सी माँ, स्टैंडर्ड वाली माँ, आज वाली माँ नहीं, डिब्बे के दूध वाली स्टैंडर्ड की माँ, उसको कहा गया उससे 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है, परवरदिगार। वो परवरदिगार, वो आप क्या समझते हैं कि आपको बहाने बहाने से आपको इनाम देकर जन्नत पे ले जाएगा, बहाने बहाने से जन्नत। लेकिन शर्त क्या थी, शर्त वही है अलियन वलीउल्लाह विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद, ये शर्त है। इस शर्त के साथ विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद जो, ये शर्त है। जब ये शर्त है, जो आला दर्जे की आपको नेमत दी गई, तो इस नेमत के शुक्राने के लिए क्या काम करना, नाफरमानी से बचना, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना। और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए अब क्या करें, कैसे हमें इल्हाम हो अल्लाह ताला की नाफरमानी का। तो अब एक बात बताई गई कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का इल्हाम आपको कैसे होगा, कि ना अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का इल्हाम हमें ऐसे होगा कि कहा गया कि अल्लाह मगरूर, बद अखलाक, बद ज़बान, बाजारू किस्म के लोग से, जो दिन भर गधे की तरह काम करता है, रात को मुर्दार की तरह पढ़ के सो जाता है, दुनिया का आलिम है, आखिरत से जाहिल है, अल्लाह उससे शदीद नफरत करता है। कभी सुनाया था, है ना? और इसके बावजूद हमसे नफरत ही चल रही अल्लाह में, वो बार बार सवाल भी पूछा जाता है, ये आखिर में क्यों ये चीज़ बता रहे, ये सारी चीज़ पता कैसे चलेगी। इल्म जो हासिल कर लेता है ना, फिर वो रुकता नहीं, सीना उसका फट रहा होता कि कहीं ना कहीं बताए, कहीं चाहे उसके घर वाले पागल कहें, दीवाना कहें, कुछ भी कहें, वो बोल रहा होता, बता रहा होता, कह रहा होता, समझा रहा होता, बता रहा, ये कुछ ना कुछ कर रहा होता। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह क्या करता है, नफरत करता है इससे कि जो दिन भर गधे की तरह काम करता है, तो काम करता है तो क्या होता है, दुनिया का आलिम है, जब दुनिया का आलिम होगा तो क्या होगा, मर्तबा उसका बड़ा हो जाएगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, और बहुत ठाट बाट होगा, आड़ा तिरछा हो जाएगा, अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुआ था। उससे कहो ना कि दुनिया का आलिम है, आखिरत से जाहिल है, अल्लाह उससे नफरत करता है। ये दुनिया का आलिम जो है वो आखिरत से जाहिल है, क्योंकि नजुल फसा की एक रवायत आप लोगों को सुनाई थी, कौन सी रवायत सुनाई थी कि बहुत सारे खुश शक्ल बुलंद मर्तबा जबान दराज कल क़यामत के दिन हलाक होंगे। खुश शक्ल, तो अगर खुश शक्ल ना हुआ तो तू बशकल भी है, ज़बान दराज भी है, समझे, तू सारी चीज़ें तेरे में पाई जाती हैं, उसके बाद तू ज़बान दराज भी कर रहा, बशकल भी है, मर्तबा तेरा बड़ा हो गया। अरे एक से एक टीवी पे आते नहीं, ये वहाँ के डायरेक्टर हैं BIA के, जो पायलट से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको शक्ल देख के पता चल जाता कि इसने दुनिया जहान की, छोड़ो यार इस पर कहाँ कहाँ बात बता रहे हैं बिल्ला जी की, सब खुद देख के पहचान लीजिए। कहते हैं वो गालिब तो खत कम मजमू भाप लेते थे लिफाफा देख के, हम लोग इतनी मोटी मोटी शक्लें, ऐसी भयानक शक्लें देख के हम भाप नहीं सकते कि कौन क्या होगा। कुछ तो आप रखिए, इश्क रखिए। तो क्या कहा जा रहा है, बुलंद मर्तबा खुश शक्ल बुलंद मर्तबा कल क़यामत के दिन हलाक होगा। क्यों हलाक होगा, इसलिए हलाक होगा ये दीन से जाहिल है, दुनिया का तो आलिम है, आखिरत से जाहिल, अल्लाह से शदीद नफरत करता है। तो जब तक ये इल्म के लिए दीवानगी नहीं अख्तियार कीजिएगा, सचमुच वाली दीवानगी, वो वाली दीवानगी नहीं है, वो अल्लाह और रसूल से इश्क वाली, ये है दीवानगी अल्लाह और से रसूल से इश्क की। एक हदीस हम एक बार पढ़ा, हमने दो बार पढ़ा, 5 साल से पढ़ रहे, 10 साल से पढ़ रहे, 15 साल के बाद जब दोबारा उसको पढ़ा, मैंने कहा इससे तो एक नया नुक्ता और निकल रहा। ये होता है कि ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया बस खत्म हो गया, हमने एक दफ़ा तो पढ़ लिया, नहीं, ये हमने इसको निशान लगाया तो हमने इसको आगे क्यों नहीं पढ़ाया, तो पता चला उस वक्त दिमाग में नहीं है, अब दिमाग में वो चीज़ आ रही कि नहीं होना। बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से कोई नई नई चीज़ें पैदा होती। मौला कहते नहीं आपको ये अचानक इल्म पे कूद के क्यों आ गए, इल्म पे कूद के इसीलिए आ गए कि ये सारी चीज़ बताई गई कि आज के दिन गुस्ल करना, आज के दिन अपने रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत से पेश आना, आज के दिन ऐसा करना, भाइयों से मुस्करा के मिलना, उनको तोहफे तहफ़ देना। यहाँ तो भाइयों से मुँह फुलाए रहते हैं, अल्लाह उनसे शदीद नफरत करता है। बताइए, जो भाइयों से मुंह फैला के त्यूरी चढ़ा के रखते हैं, अल्लाह से नफरत करता है। तो वहाँ तो कहा जा रहा है कि मिलो, और ये हमारी त्यूरी चढ़ी हुई, तो फिर क्या हो गया, तुम तो अल्लाह तो नफरत करता, तो नफरत क्यों करता, क्योंकि तुम्हें इल्म नहीं। अगर तुम्हें इल्म होता और इल्म के साथ साथ यकीन भी होता, क्योंकि बगैर यकीन के भी मामला बेकार हो जाएगा, इल्म होता और यकीन होता तो फ़ायदा पहुँचता तुम्हें। कब्र में जब आएगा नमाज, एक तरफ से नमाज आएगी, एक तरफ से रोज़ा आएगा, कहेगा हट जाओ, तुम कहेगा ये करेगा हट जाओ, वो कहेगा हट जाओ, आग हर आग को हटा रही होगी कब्र, कब्र की जो आगे हो आग होती है, सर नेकियाँ आपकी हटा रही होगी, जैसी नेकी होगी रोज़ा, बेचारा हमारा रोज़ा तो लड़खड़ाता ही हुआ आ रहा होगा, क्योंकि रोज़ा रखते ही आप लोगों की शॉपिंग शुरू हो जाती, हम पीछे पीछे थैला लिए हुए चल रहे होते हैं, कहते हैं ये जनबुरीदा थैला लिए हुआ चल रहा, वो शॉपिंग करती हुई जा रही है बेपर्दा, दुपट्टा कभी यहाँ कभी यहाँ, दुपट्टा ओढ़ो दुपट्टा ओढ़ो, जानने वाली सामने सारी, कभी दुपट्टा यहाँ जाता कभी यहाँ 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 यहाँ, ये हो रहा होता है। तो ये लड़खड़ा था, वो हमारा रोज़ा आएगा, वो एक आग को हटाएगा, फिर हमारी नमाज आएगी वो हटाएगी, लेकिन मौला क्या करे, फिर एक तरफ से उसका इल्म आएगा और कहेगा अगर तुम लोग इसको नहीं बचा सकते हट जाओ, मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। आयतुल्लाह रिशेरी की किताब इल्म व हिकमत कुरान हदीस की रोशनी में, इल्म दो दो पार्ट हैं उसके, पार्ट 1 पार्ट 2 आयतुल्लाह रिशेरी की किताब इल्म और हिकमत, इल्म और हिकमत बांध लीजिए सीने पे, बांध लीजिए अपने के कब्र में, हमारे साथ रख देना, क्या क्या हो सकता कि इसकी ज़रा सी मोहब्बत से ही हमारी जान बच जाए, क्योंकि इल्म इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी फजीलत वाली चीज़ है कि इसकी वजह से हमारी जान बच जाएगी, बहुत फ़ायदा बहुत फ़ायदा। कहा जाएगा हट जाओ, अगर तुम लोग इसको बचा नहीं सकते तो हट जाओ, मैं काफ़ी हूँ। तो कह रहा मैं काफ़ी हूँ मौला। तो ये मौला ने कब कहा था, 1400 साल पहले कहा था। तो आम लोगों को पता क्यों नहीं, उनके मानने वालों को पता क्यों नहीं, उनके मानने वाला इल्म का शायदाई क्यों नहीं है, कुरान रटा हुआ क्यों नहीं है, उसको कुरान रटा होना चाहिए, कोई भी बात करे कुरान से बात कर रहा। आप किसी कहा जाए कि कोई बात करने के दौरान कोई कुरान से बात करो, आम घरों में बात कीजिए, रवाज इतना रवाज दे दिया जाए कि हमारे यहाँ कुरान हदीस में बात कर, ये कैसे मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन है, क्यों जिक्र नहीं करती हजरत फिज़ा का, तो कहाँ से हजरत फिज़ा ने कुछ सीखा था। इसके मतलब है कि घर में कुरान हदीस की रोशनी में बात होती तभी तो हजरत फिज़ा कुरान में बात करने लगे। غور ہی نہیں کیا کبھی حضرت فضا قرآن میں کیسے بات کر رہی یا حدیثیں کیسے پڑھ رہی ہیں، کیا ہو رہا، کون سی زندگی گزارا، ابھی سانس کی مہلت ہے نا، بلی ابھی عمال نما لپیٹا نہیں کیا مولا کرے، ابھی قلم خشک نہیں ہوا، یہ بھی سب مولا ہی کہا ہوا، ابھی قلم خشک نہیں ہوا، عمال نما لپیٹا نہیں گیا، ابھی جو ہے جلے تو کیا کرو، کچھ کر لو، تو یہی کچھ کر لو، اور کیا کر لو، مولا کہہ رہے کچھ کر لو، زندہ ہے تو غنیمت جانیے زندہ کو، زندگی کو کچھ کر، بلا وجہ جھوٹی تسلی دے کے اپنا، کیونکہ وہاں چلے گا اصول، جیسے آنکھ بند ہوگی قبر میں جائیں گے وہاں چلے گا اصول، وہاں جو ہے بیٹے کی موٹی سی پھولوں کی چادر، زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، آج پھولوں کی چادر موٹی سی چڑھا دے تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں قرآن بیٹھ کے پڑھو تب ہوگا کچھ فائدہ، کتنے دن تک قرآن پڑھے گا، موٹی کی پھول چادر چڑھا دے ہمارا گزارا ہو جائے گا، نہیں گزارا ہوگا، گزارا ہوگا اپنے اعمال سے، اپنے اعمال جس کے ہمارے ہی اعمال صحیح نہیں تو پھر کیا ہوگا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر سے سنیے، جیسے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو تو انہی کلاسوں میں، جب بھی ہم لوگوں کی پہلی کلاس، تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو پہلی کلاس ہوتی ہے وہ ٹوٹل علم کے متعلق ہوتے، علم حاصل کرو تو اس کلاس میں ایک کہیں نہ کہیں سے ہمت کر کا کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور پوچھ لیتا ہے کہ کیا دنیا کا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اب تک تم دنیا کا علم حاصل کر رہی تھی، کبھی نہیں پوچھا کہ آخرت کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، جیسے ہی یہ والی بات بتائی جاتی ہے فوراً آ جاتا ہے کہ کیا دنیا کا علم حاصل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں، بھائی کیوں نہیں فائدہ، نوکری ملے گا فائدہ نہیں ہے، لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی فائدہ نہیں ہے، وہ کہا جائے گا آج کیا روزہ رکھا، پھر کیسے روزہ کیسے رکھتی، دفتر جانا تھا، دو رکعت والی نماز پڑھی، نہیں نماز پڑھ، او پی ڈی میں ہماری ڈیوٹی تھی، ایم بی بی ایس کیا ہوا نا، تو یہ تمہارا 2 لاکھ حج گیا، وہاں سے کیا ملا، 2 لاکھ حج گیا، قیمت نہیں پتہ، نہیں ابھی اس کی قیمت نہیں پتہ، یقین نہیں ہے، تبھی تو مولا کہتے ہیں کہ دین میں یقین سر فہرست ہے، سر فہرست ہے دین میں یقین سر فہرست ہے، یعنی کہ جب یقینی نہیں تو پھر سب کام کچھ بھی سنتی نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، یقین آ جائے کہ جو کچھ بتائی جا رہی بات، جو کہی جا رہی حوالے کے ساتھ کہی جا رہی ہے صحیح ہوگی بات، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے، سن بھی لیں، یقین بھی ہو، توفیق بھی مل جائے، تو پھر ہوگا، دین میں سر فہرست توفیق ہے، تو سب گیا نا، تم نے پڑھے تھے تو دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، تو دیکھو اس کو تمہیں چند ٹکے تو مل رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنے بڑے بڑے فائدے جا رہے ہیں، فائدہ تمہارا چلا گیا، نہ تم غسل کر پائیں، نہ تم روزہ رکھ پائیں، نہ تم دو نماز پڑھ پائیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت تھی جس کو تم بڑی بری نگاہ سے دیکھتی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے نماز بھی پڑھا، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے غسل بھی کیا، کیا فائدے میں کیا فائدہ، کیا فائدہ ملا، آج تو تم دھول میں اٹے ہوئے جو بالوں کو دیکھ رہے ہو، تو کہنا کہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ان کا رتبہ دیکھو کہ کافی افسوس ہاتھ ملیں گے، خون کے آنسو روئیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کو پہچانا نہیں، جنہوں نے پہچانا ان کو، جنہوں نے پہچانا تھا، جنہوں نے ان کی محبت کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں جو لوگ ان کے بتائے ہوئے اس پہ چلے، وہ لوگ کیا کریں، وہ خوش ہوں گے، دیکھیں گے، وہ تو تمنا کر رہے ہوں گے جلد سے جلد قیامت آئے، پروردگار تو ان کے دشمنوں کو اپنی آنکھوں سے ذلت ان کے دشمنوں کو دیکھیں، تب ہمیں دل کو سکون ملے گا، ورنہ دل کو سکون نہیں ملے گا، کہاں خوشی کیسی دنیا میں، کس بات کی خوشی چاہتی ہیں، خوشی کیسی دنیا میں، مولا نہ رہے، ان کو قتل کیا گیا، محمد علی محمد کو قتل کیا گیا، کربلا والوں کو قتل کیا گیا، اب بھی دنیا میں رہنے کی خوشی منانے والی جگہ رہے گی، کوئی خوشی منانے والی، خوشی یہی ہے کہ ان کی پیروکاری کریں، یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی ہے، ولایت کی محبت ڈال دی ہے، ولایت محمد علی محمد ہمارے دل میں ڈال دی، یہ ہے خوشی، یہ ہے خوشی، یہ سب سے بڑی خوشی ہے، تبھی تو مولانا نے کہا کہ تم جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، کیا سمجھے کہ تم جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا، جنت تمہارے لیے پیدا کی، جب جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی تو ہمیں جنتی کام بھی تو کرنا پڑے گا، یہ پیدا کی گئی، یہ جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی، ہم کام کون سے کر رہے ہیں جو ادھر جانے والا جہنم میں کام کر رہے ہیں، اور جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی، تو ہم تو اپنے ہاتھ سے گنوائیے نہ اپنے ہاتھ سے، کہ اپنے ہاتھ سے اپنی نعمتوں کو گنوا دیں، تو کس چیز کی طرف بھاگنا، علم کی طرف بھاگنا ہے، اس میں ایک حدیث اور سنا کے بات کو ختم کر دیں، ہمارا گفتگو ہمیں اس طرح سے بات کرا دیں کہ اب ہم دوسری جگہ، مولا سے کسی نے کہا علم کی بات ہے، مولا سے کسی نے کہا مولا مشکل کشا گیا، آج جن کی وہ منائی جا رہی تو انہی کا ذکر کر رہے ہیں، ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسے آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں، کہنا اگر تجھ سے پوچھا جائے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں تو کیا کرے گا، تو گننے کا پہلے 1 2 3 4 پھر سے شروع کرتے 1 2 3 نہیں تھا فوراً بتا دے گا 5، یہی ہے نا، लेकिन इसी तरह मेरे सामने सब कुछ है, मैं बता देता हूँ कुछ। एक यहूदी बहुत सोच समझ के आया कि ऐसे वक्त में अली से सवाल पूछा जाए, जवाब तो ज़रूर देंगे, तो फिर होगा क्या, नमाज का अव्वल वक्त निकल जाएगा। सोच के आया, आया जब वजू करके जाने लगे, मौला मस्जिद तेरे नमाज पढ़ने के लिए, कहन अली एक सवाल है, कहन क्या पूछो, कहन कितने जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कितने बच्चे देते हैं, चलिए अब गिनती रही है, शुरू हो जाइए, है ना, कब तक गिनती रहिएगा, खैर हमें जानवर की जब पूरी तादाद पता चलेगी तब तो गिनते रहेंगे, हमें तादाद ही नहीं पता कौन से जानवर कितने। समंदर में आप देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखिए तो हैरान हो जाती है क्या चीज़, ये अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं, हमें तो यही नहीं पता चल रहा कितने उड़ने वाले जो हैं अब बच्चे दे रहे हैं और कितने रेंगने वाले जो हैं वो अंडे दे रहे हैं, क्या तरह तरह की है या नहीं है। तो मौला ने सीधी से एक जुमला कहा और ये जा वो जा, नमाज पढ़ने के लिए चले गए, हैरान होकर रह गया, कहा कि जितने का कान जाहिर है वो सब बच्चे देते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं सब अंडे देते हैं, है ना। दो सेकंड में जवाब दे दिया किसने, मौला ने, और आपको कोई, आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। वो मौला कह रहा है, मुझसे पूछ लो जो कुछ पूछना, ज़मीन से ज़्यादा आसमान की चीज़ें मैं जानता हूँ, मेरे सामने से पर्दे हटा दिए जाएं, यकीन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्या, क्योंकि सब कुछ हमें पता है। लेकिन वो एक जगह पे कह रहा है, काश मुझे मालूम होता, लीजिए ये इनको भी कुछ नहीं पता, लेकिन काश मुझे मालूम होता कि जिसने इल्म हासिल नहीं किया उसने क्या पाया, क्या समझे, काश मुझे मालूम होता। वो कह रहे हैं कि काश मुझे पता चलता कि जिसने इल्म हासिल नहीं किया है, इल्म से नहीं हासिल किया उसने क्या पाया, और जिसने इल्म को हासिल कर लिया उसने क्या खोया, काश मुझे मालूम होता। तो पता ये चला कि जिसने इल्म को हासिल किया वो, ये इसका मतलब ये नहीं कि उनको मालूम नहीं है, काश मुझे मालूम होता यानी मौला का नहीं, कहते कुछ है ही नहीं जो हम तुम्हें बताएं, काश मुझे मालूम होता यानी कुछ है ही नहीं, हमारे सामने तो पर्दे हटा दिए तब भी हमारे यकीन में कमी नहीं होगी, सब कुछ हमें पता है। तो जिसने इल्म से हाथ धो लिया अपना, जहालत से हाथ धोया इल्म से, कहते जिसने इल्म को नहीं हासिल किया उसने क्या पाया, कुछ पाया ही, उसने कुछ भी नहीं पाया, ये दुनिया का पा लेना इसे क्या मुराद है, पा लिया क्या पाया दुनिया, ये दुनिया पाया तो कारून ने क्या पाया, फिरौन ने क्या पाया, नमरूद ने क्या पाया, शद्दाद ने क्या पाया, यजीद ने क्या पाया, फिर पाया वाया कुछ नहीं, उसको तो अब जो पाया होगा ना वो पता चल रहा होगा, आप लोगों के पास भी पाए अब तक रखे होंगे, सिरे पाए सब रखे होंगे, ये वाला पाया नहीं है, ये आग का पाया है, पढ़ रहा होगा जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मौत की दुहाई दे रहे होंगे, मौत की तमन्ना कर रहे होंगे, मौत नहीं आएगी, मौत की तमन्ना करेंगे मौत नहीं आएगी, ये हो रहा। तो जो मौला ये कह रहा है कि मुझे खबर नहीं, तो पता चला कि इल्म ना हासिल करने से कुछ भी नहीं मिलता, इल्म हासिल करने से कहते कि क्या नहीं पाया फिर सब कुछ पाते हैं। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि इल्म जब बग़ैर हासिल किए हुए कोई फ़ायदा खातिर खाम मिल नहीं सकता, हमें मुसलसल इल्म हासिल करता रहना पड़ेगा, मुसलसल पढ़ते रहना पड़ेगा, एक आदत सी बनानी पड़ेगी कि हम रोज़ाना इल्म हासिल करते रहें, रोज़ाना अपनी किताबें बर्फ गर्दानी करते रहें, यहाँ तक फट जाए, ये किताब को इतनी दफ़ा उलटिए, इतनी दफ़ा पढ़िए, देखिए कुछ कहाँ कहना, कुछ कहीं नहीं कहना, यहाँ कहना वहाँ कहना, यहाँ कहना वहाँ कहना, ये हमारे सीने में इल्म होगा। तभी तो कहा जाता है कि कितनों के बार क़यामत के दिन आप किसके पास खड़े होना पसंद करेंगे, यहाँ किसके पास, किसी सरबराह के पास ले जाके खड़ा कर दिया जाए तो आप तस्वीरें दिखा दी बड़ी, देखिए मैं ये, देखिए मैं इसके साथ खड़ी हूँ, देखिए मैं इसके साथ खड़ी, शर्म करेंगे इसके साथ खड़ी तो शर्म करेंगे, क़यामत के दिन के अल्लाह ताला पकड़ना लेंगे। जब किसी फासिक व फाजिर की तारीफ़ की जाती है तो अल्लाह गज़बनाक होता, अर्श इलाही हिल जाता है या नहीं है। हम फासिक व फाजिर के सामने तस्वीर खिंचा के उसके पास खड़े रहने के बाद खुशी का इजहार करें, खौफ ज़्यादा रहें कि अजाब ना नाजिल हो जाए, इसके ऊपर तो नहीं नाजिल होगा अजाब, क्योंकि इसके लिए तो रस्सी दराज कर दीजिए, खुद डरिए कि हम जो हैं मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले, हमें जल्दी से ठोकर लगेगी, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए नहीं चाहता कि हम दुनिया में रस्सी दराज कर दिया जाए, हम जो जी चाहे करते रहें, नहीं हमारे लिए नहीं है ये, उनके लिए, तो इनसे दूर रहना चाहिए कि फुस को फजूल करने वालों से हम दूर रहें। तो क्या करें, इल्म को हासिल कीजिए, मुसलसल हासिल करती रहिए, पढ़ती रहिए, और जो आगे बात जहाँ तक मुमकिन हो सके बताती रहिए, सुनाती रहिए लोगों को, तो इससे फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह शदीद तरीन नफ़रत करता है, समझे आप, किन लोगों से नफरत करता है, वैसे ही लोगों से नफरत करता है, जाहिल लोगों से अल्लाह नफ़रत करता है शदीद तरीन। एक बाब है नफ़रत का जिसको मैंने सोचा था कि बनाएंगे, पहले आपको बताएंगे कि अल्लाह किन किन लोगों से मोहब्बत करता है, फिर बताएंगे अल्लाह किन किन लोगों से नफ़रत करता है। ये पूरा बाब है, किसी जगह मुझे देना मुझे यहाँ बता दिया गया, यहाँ आके दीजिए, तो ये आप लोगों को बताएंगे नहीं, वरना हमारा ये पूरे क्लास रह जाएगी कि अल्लाह किन किन लोगों से नफरत। लेकिन एक चीज़ बता दिया कि अल्लाह ताला उससे नफ़रत करता है। किससे नफरत करता है? जो दुनिया का आलिम है आखिरत से जाहिल है, अल्लाह उससे शदीद नफरत करता है। जिस चीज़ का इल्म तुम्हें हासिल करना चाहिए उसका इल्म तुमने अब तक हासिल नहीं किया। कितनी छोटी सी पतली सी किताब है, छोटी सी किताब है, बहुत जो बहुत छोटी सी किताब, अगर आप देखिएगा तो आप याद करना चाहिएगा तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन में याद हो जाएगी। 3-4 दिन में क्या चीज़ याद हो जाएगी? क्या 3-4 दिन में याद हो जाएगी कि मरने के बाद क्या होगा? शेख अब्बास उम्मी की किताब है मनाजिल आखरत, 3-4 दिन में याद हो जाएगी सकरात के वक्त क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी, क्या क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाएगी। एक एक दिन में एक एक पेज आप अगर याद कीजिएगा तो आपकी याद होए, फिर उसकी हदीसें निकालना शुरू कर दीजिए कि ये सकरात में ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएगी, फला चीज़ उस चीज़ का लिखा आपने, उसकी हदीस आपने निकालना शुरू करी, आप जमा कर दिए, तो आपको इस तरह से सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आलिम, ये कौल आज तक खुद ही हमारी समझ में नहीं आया। 1000 दफ़ा हमें बताया जाता, हमें कभी समझ में नहीं आया था कि इसके क्या माने, न जाने कितनी दफ़ा हमें बताया गया, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिमाग क्या समझना चाहता है कि जिसने अपने नफ्स को बचाना उसने अपने रब को बचाना। जब हम पूछते हैं खास तौर डॉक्टर आबिद से पूछे भाई इसका क्या कहना, आपको न जाने कितनी दफ़ा बता चुके हैं, पता नहीं वो क्या बताना बताते हैं, हमें क्या समझना कि नफ्स को पहचाना कैसे पहचाना, खुद भी पढ़ चुके हैं न जाने कितनी दफ़ा, लेकिन हमें ये कौल कभी समझ में नहीं आता कि इससे क्या मुराद है। कहा जाता है कि पहचानने से मतलब अपनी शख्सियत को पहचाने, आपको कैसे पैदा हुए, कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो हमें ये जो तगैरात जो तब्दीली आ रही है, यहाँ आए हो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जिसको पहचानिए, जो पहचानेंगे तो हम इसके लिए काम करेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें बताई जाती। कभी कहा जाता है कि पहचानो कि तुम्हारे अंदर पर आपको आवाज़ अच्छी दी है तो आप पढ़ती रहिए, आपको जहन अच्छा दिया है, बोलने की सलाहियत दी तो आप बोलिए, बोल के बताइए, इन्हें अपने ज़रिए से दीन को फैलाती रहिए कि हमें क्या क्या सलाहियत है। लिखने की सलाहियत किसी को हो तो वो लिखने के ज़रिए से काम करे, इंतज़ाम के ज़रिए से जिसकी जैसी सलाहियत है वो उसको इस्तेमाल करे, उसके ज़रिए कहीं ये बताया गया। तो इसमें तरह तरह की चीज़ें हमें बताई गई, हमें सही तरह से बहुत ज़्यादा दिल को लगी हुई कोई बात नहीं कि जिसके ऊपर हम बहुत तफसील से आपसे बात कर सकें, बहुत माफ़ी चाहते हैं। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले,
अल्लाह जल्ला जन्न या मौला, अल्लाह जल्ला जन्न, अल्लाह जल्ला जन्न, अल्लाह जल्ला जन्न, या साहिब अस्समा, अल्लाह जल्ला।